ஓம் ஓம் ஓம்.
ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரியஜி துவாரா விரச்சித் வேதாந்த டிண்டிமா நாமக ஸ்தோத்ர கே ஆதார் பர் வேதாந்த விசார் சல் ரஹா ஹை. அபியாஸ் கே லியே 23வா ஸ்லோக் ஹோகா. அலம் யாகைரலம் யோகை அலம் புக்தி அலம் தனை பரஸ்மின் ப்ரஹ்மணி ஜ்ஞாதே இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. அலம் வேதேரலம் சாஸ்திரை அலம் ஸ்மிருதி புராணகை பரமாத்மனி விஜ்ஞாதே இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. நர்ச்சா ந யஜுஸார்த்தோஸ்தி நசாம்னோஸ்தி நசாம்னார்த்தோஸ்தி கஷ்சன ஜ்ஞாதே ப்ரஹ்மாத்ம விஜ்ஞானே இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. கர்மாணி சித்த சுத்தியர்த்தம் ஐகாக்ர்யார்த்தம் உபாசனா மோக்ஷ்யார்த்தம் ப்ரஹ்ம விஜ்ஞானம் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. சஞ்சிதாகாமி கர்மாணி தஹ்யந்தே ஜ்ஞானவன்னினா ப்ராரப்தானுபவான் மோக்ஷஹ இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. ந புண்ய கர்மணா விருத்தி நஹானி பாப கர்மணா நித்யா சங்காத்ம நிஷ்டானாம் இதி வேதாந்த டிண்டிமா. புத்தி பூர்வா புத்தி பூர்வம் கிருதானாம் பாப கர்மணாம் ப்ராயச்சித்தம் அஹோ ஜானம் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. பரஸ்மின் ப்ரஹ்மணி ஜ்ஞாதே. பரமாத்மா கோ ஔர் ஸ்வயம் அப்னே கோ. தோனோ கோ ஏக் ரூப் மே ஜோ ஜான் லேதா ஹை. ஜ்ஞாதே சதி ஜான் லேனா கடின் ஜரூர் ஹை. ஹாலாங்கி இஸ்ஸே பஹலே கே ஸ்லோக் மே யே கஹா ந ஆயாஸ பரமாத்மா கோ ஆத்மா கோ யானி ப்ரஹ்ம ஔர் ஜீவாத்மா தோனோ கோ ஏக் ரூப் மே ஜான்னா कोई आयास, कोई परिश्रम, कोई मेहनत करना नहीं है। क्यों नहीं करना है महाराज, मेहनत क्यों नहीं करना है? तो बोले, अन्य के द्वारा अन्य को जानना होता तब तो मेहनत करना पड़ता, अप्राप्त को प्राप्त करना होता तो मेहनत करना पड़ता, यहां तो प्राप्त की ही प्राप्ति है, स्वयं को जानना है, क्या मेहनत करना है भाई? तो वही बात इस श्लोक से कह रहे हैं शंकराचार्य जी। हालांकि आज तक कठिनाई तो जरूर है, परिश्रम तो हो रहा है, जानना ऐसा लगता है कि असंभव है, संभव नहीं है ऐसा भी लग रहा है, जब इन वेदांत की बात हम कहते हैं, इस भूमिकाओं की, ज्ञानियों की भूमिकाओं की चर्चा हम करते हैं, तो सुनने वाले श्रोता जिज्ञासु मुमुक्षु कहते हैं, महाराज हम तो बहुत दूर हैं, अपने आप को वह बहुत दूर पाते हैं, क्योंकि हमारी कोई तैयारी ही नहीं है, उसके हिसाब से तो हमारी कोई तैयारी ही नहीं है। तो निराश हो जाते हैं, और एक तरफ उपनिषद ने कह दिया यह चेद वेदी तथ सत्यमस्ति, इसी जन्म में यदि उस परमात्मा आत्मा को एक रूप में जान लिया तब तो उसका जन्म सार्थक हुआ। नचे दिहा वेदिन महती विनष्टि, यदि नहीं जाना तो बड़ा अनर्थ हुआ। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा अनर्थ तो यही है कि जाने बिना यदि मरना पड़े तो, एक तरफ ये कहा जा रहा है मरना निश्चित है, अभी ये लग भी रहा है कि हम नजदीक नजदीक पहुंच रहे हैं, स्टेशन आने ही वाली है लग रहा है, और उपनिषद के कहे अनुसार आपने कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में घबराना स्वाभाविक ही है, वो चिंता का विषय स्वाभाविक ही है। लेकिन ऐसे जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा धैर्य दिया और आश्वासन दिया, तुम चिंता नहीं करना, अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गति। शंकराचार्य जी ने कोई एक ही जन्म में उस भूमिका को प्राप्त नहीं किया, सुखदेव ने उसे एक ही जन्म में उस भूमिका को प्राप्त नहीं किया, जन्म जन्म जतन किया है, प्रयत्न किया, मेहनत किया, कोशिश की, तब जाके उनको यह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति हुआ, तभी वो उस जन्म में वो सफल हुए। प्रयत्न किए बिना जन्म बर्बाद करना एक अलग चीज है, प्रयत्न करते हुए जन्म बर्बाद करना एक दूसरी, बर्बाद तो होगी क्योंकि अनुभूति के बिना यदि मरना पड़े, यही महति विनष्टि है। लेकिन प्रयत्न करते हुए विनाश भी हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, एषाम पूर्वकृताम उषित्वा शाश्वती समा। पूर्व जन्म में किए हुए साधना को वह उसी तरह प्राप्त करता है जैसे विद्यार्थी कल पढ़ी हुए पाठ को दूसरे दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पढ़ती है, कल जो पाठ पढ़ लिया है विद्यार्थी ने, आज उस पाठ को फिर दोहराने की जरूरत पड़ती है? आज वो पाठ पठित हो गया कि नहीं? कल पढ़ी हुई पाठ आज बिना पढ़े पठित हो गया कि नहीं? है ना? इसी तरह पूर्व जन्म में किया हुआ तुम्हारा प्रयत्न कोशिश दूसरे जन्म में बिना किए कृत हो जाता है। न करने पर भी क्या होता है? कृत हो जाता है। तो इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो योग भ्रष्ट की चर्चा करती है वहां। प्रयत्न करते हुए यदि कोई मर जाता है तो सफलता प्राप्ति से पहले मर जाता है तो अर्जुन का प्रश्न है, उसका सारा प्रयत्न बेकार जाएगा? बोले नहीं। पौर्वदेहिकम तत्रतम लब्ध्वा, पहले देह में किए हुए साधना उत्तर देह में उसको स्वतः प्राप्त होता है। और इस आश्वासन के चलते थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और साधना करते रहना चाहिए। भगवान ने दूसरा जन्म भी दिया है और दूसरा भी जन्म होगा, और पहले किया हुआ बेकार जाएगा नहीं करके फिर सोते नहीं रहना चाहिए। कोई नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करके तो सोते नहीं रहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, प्रयत्नरत होनी चाहिए। तो वही बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं, परस्मिन् ब्रह्मणि ज्ञाते, परमात्मा को और खुद को यानी जीवात्मा अपने को एक रूप में जान लेता है। जैसे कि गुरु जी कह रहे हैं तत्त्वमसि, जैसा कि शिष्य कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, सोहम हमसह, वही मैं हूं और मैं ही वह है। उसमें और मेरे में रंच मात्र भी भिन्नता नहीं है किसी भी हालत में। ये अनुभव को ही यहां अपरोक्ष कहते हैं, और उसी बात को यहां संकेत कर रहे हैं कि परस्मिन् ब्रह्मणि ज्ञाते, जान लेने पर अलम यागही, फिर उसको वैदिक यज्ञ याग आदि कर्म करने चाहिए कि नहीं? तो alam. Alam माने पूरा, पूरा हो गया उसको, अब यज्ञ करने की जरूरत नहीं है उसको, वैदिक कर्म करने की जरूरत नहीं है उसको, अलम याग ही अलम योग ही, उसको अब ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उसको चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, उसको प्राणायाम आदि कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन साधनाओं का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उसने प्राप्त कर ली। प्राप्त कर लेने के बाद उसको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्ञानी को अकरणे प्रत्यवाय साधनानी ये नियम लागू नहीं होता। अज्ञानी को अकरणे प्रत्यवाय साधनानी ये नियम लागू होगा। वेद अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, संवैधानिक अनुशासन, ये तो अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानियों के लिए ये कोई भी अनुशासन लागू नहीं होता। जब ये बात कही जाती है तो तर्कवादी तार्किक लोग ये आक्षेप लगाने लग जाते हैं, ज्ञानी को कोई अनुशासन लागू नहीं होता इसका मतलब वो स्वच्छाचारी हो जाएगा, तो वो आक्षेप लगाते हैं कि वो तो स्वच्छाचारी हो जाएगा। हाँ, समझे कि नहीं? अब उदाहरण के रूप में मैं आपको थोड़ा संकेत कर दूं, अन्यथा नहीं लेना, ये तो प्रसंग आ गया इसलिए बता रहा हूं। कोई जीवन मुक्त पुरुष ज्ञान निष्ठा में अवस्थित होकर उस भूमिका में श्री प्रारब्ध क्षय करने के लिए वह विचरण कर रहा है, समझे कि नहीं? वह जीव ब्रह्म की एकता की निष्ठा में स्थिर हो चुका है, मूला विद्या उसके समाप्त हो चुके हैं, संचित समाप्त हो गया है, क्रियमाण उसका समाप्त हो चुका है, सिर्फ प्रारब्ध उसके लेसा विद्या के चलते चल रहा है। वह यदि प्रारब्धाधीन प्रारब्ध को अपना जीवन समर्पण करके विचरण कर रहा हो, प्रारब्ध जिधर ले जा रहा है ले जा रहा है ना? काठमांडू से प्लेन का टिकट खरीद कर सीट में बैठकर बंबई नहीं आ रहा है वो, ये कोई प्रारब्ध का खेल नहीं है। उसे संकल्प पूर्वक इतनी तारीख को मुझे बंबई पहुंचनी है, एक महीना प्रवचन देना है। हालांकि ये प्रारब्ध क्षय की भूमिका है, प्रारब्ध की ही भूमिका है, लेकिन अंदर वो निष्ठा तो नहीं है ना? तो संकल्प पूर्वक हो रहा है, मुझे जाना है, एक महीना प्रवचन करना है। जिसने सिर्फ प्रारब्ध को जीवन समर्पण किया है वो लक्ष्य बनाएगा नहीं कि मुझे बंबई जाना है। कहां जाना है या नहीं है उसको कुछ पता ही नहीं है। प्रारब्ध घुमाते घुमाते जान ले जाता है, जिधर ले जाता है ले जाता है, एक हमारे मित्र सन्यासी थे, महात्मा काशी में पढ़ते समय, बड़े विचित्र स्वभाव के थे वो। मन में कुछ आ गया कि कहीं जाएं काशी से बाहर, तो एक झोला एक कमंडोल ले ली, स्टेशन में पहुंचे। सामने जो ट्रेन खड़ी है उसमें बैठ गए। पूछना नहीं है ये ट्रेन कहां जाएगी। हाँ, किसी ने पूछा महाराज कहां जा रहे हो, बोले स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन कहां जाने के लिए, जहां ट्रेन पहुंचा देगी वहां चले जाएंगे। शाम गए प्लेटफार्म में, सामने पहले नंबर में प्लेटफार्म में जो ट्रेन खड़ी है, अंदर गए बैठ गए। पहुंचे तो कहां, सोचा था हरिद्वार जाए गंगा ना, ने पहुंच गए कलकत्ते। कलकत्ते की ट्रेन थी। दो चार महीना उधर घूमे, फिर इच्छा हुई कि ट्रेन में चढ़े। कहां पहुंचे तो मद्रास जाए। कहां गए थे महाराज बताए, वे घूमते रहे, लक्ष्य नहीं है। प्रारब्ध जहां ले जाता है, जे कराता है कराता है। तो हम एक उदाहरण दे रहे थे, उसका यदि कुछ महात्मा यदि हरिद्वार नहीं पहुंचा तो उसका नुकसान क्या होगा, बोलो। उस महात्मा का यदि हरिद्वार नहीं पहुंचा तो नुकसान क्या होगा, और कलकत्ते पहुंच गया तो उसको लाभ क्या हुआ। तो उस भूमिका में पहुंचा हुआ कोई ज्ञानी व्यक्ति को सामाजिक अनुशासन भी लागू नहीं होता, शास्त्रीय वैदिक अनुशासन भी लागू नहीं होता है, संवैधानिक अनुशासन भी लागू नहीं होता। हम तो ये कहते हैं कि उसको तो प्रकृति के नियम भी लागू नहीं होते। समझे कि नहीं, उसको तो प्रकृति के नियम भी लागू नहीं होते हैं। तो फिर स्वच्छाचारी नहीं, स्वच्छाचार और व्यभिचार की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। वो क्या जानेगा स्वच्छाचार क्या होता है, क्या जानेगा वो व्यभिचार क्या होता है, उसको कोई नहीं। अब यदि प्रारब्ध के अधीन भिक्षा मांग कर खा रहा है, भिक्षा में जो मिल गया वो खा रहा है, स्वादु अन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौ सधम भुज्यताम। आ गया प्रारब्ध से जो हो रहा है, अभक्ष्य आ गया उस भोजन में भी तो उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भोक्ष्य अभक्ष्य की उसकी परिभाषा लागू नहीं होगी। नहीं तो प्रारब्ध से शरीर टिकानी है, प्रारब्ध ही शरीर टिकाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, कर रहा है, और जैसा भोजन शरीर के लिए टिकाने के लिए उसको मिल रहा है खा रहा है। कुत्ता, कुत्ते को मांस खाना है तो कुत्ता ये कहेगा कि ये गाय का है मैं नहीं खाऊंगा। हिंदू का पाला हुआ कुत्ता गाय का मीट खाएगा कि नहीं, नहीं खाएगा। उसको क्या मतलब, गाय क्या होता है, उसको भूख लगी है खाना है मीट, सामने देखा वो कहा जाएगा। अरे अरे अरे, हिंदू का पाला हुआ कुत्ता गाय का मीट खा रहा है। बोलो, मुसलमान का पाला हुआ कुत्ता सुअर का मीट खाएगा कि नहीं, गोश्त है भ्रष्ट हो जाएगा वो। अरे भ्रष्टा भ्रष्ट की परिभाषा तुम्हारी है, उसको क्या, उसको भूख लगी है सामने भोजन मिला है खा लिया। निस्त्रेर गुण्य पथि विचारता को विधि कह निषेधा। ऐ तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं त्रैगुण्यम विषया वेदा। हे अर्जुन, वेद का अनुशासन त्रैगुण्य को ही लागू होता है। सत्वगुणी को वेद का अनुशासन लागू होगा, रजोगुणी को भी वेद का अनुशासन लागू होगा, तमोगुणी को भी वेद का अनुशासन लागू होगा। अब गुणातीत को वेद का अनुशासन लागू कहां से होगा बोलो? निस्त्रेय गुण्य पथ विचारता को विधि का निषेध। यहां जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो तुम्हारी और हमारी चर्चा नहीं है, ये उन गुणातीत पुरुष के लिए शंकराचार्य जी ये नियम बना रहे हैं। प्रज्ञा प्रतिष्ठित जिसकी हो गई है, उसके लिए क्या है? अलम यह गई है। कर्तव्य उसने कर लिया, जान लिया तो कर्तव्य कर लिया। यहां तो नियम यह है कि जानने के बाद करना पड़ता है, जानने मात्र से नहीं होगा। हाँ, जानने से मात्र से नहीं होगा, करना पड़ेगा। वेदांत में यह है कि जानने मात्र से काम चल जाएगा, करना कुछ नहीं है। इस तरह भोजन बनाने से भोजन स्वादिष्ट होता है, जान लिया ना? फजे तो केम बनावी है, केवी रीते बनाई हुई है, केटला मीठो नाखवानी छे, केटला मिर्ची नाखवानू छे, साकर केटला नाखवानू छे, है ने? ये होगा कि नहीं? बेसन कितना डालना है, आटा कितना डालना है? फजे तो में बेसन नहीं डालना होता है। अच्छा, भगवान जाने भाई। खाली गुठली धोना है, बस छिलके धोना है। शक्कर तो डालनी होगी ना, नमक तो डालना होगा, मिर्ची तो डालना ही होगा, गुड़ डालना होगा, कुछ तो डालना ही होगा। जानने मात्र से नहीं होगा, करना पड़ेगा, तभी भजे तो खा पाएंगे। तो यहां नहीं, यहां तो जान लिया, क्योंकि बढ़िया फजे तो खाने का जो आनंद है उससे तो हजार 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 गुना आनंद ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहा है। तो फजे तो खाकर आनंद अनुभूति करने के लिए वह गुजरातियों के घर दौड़ेगा है? दौड़ेगा वो है? या गट्टे की सब्जी खाने मारवाड़ी क्या जाएगा? या पूरणपूरी खाने के लिए महाराष्ट्र में जाएगा? कहां जाएगा वो? क्या सांभर इडली खाने के लिए मद्रास जाएगा वो? कहां जाएगा वो? वो तृप्त है। इसलिए तो चांदोग्य उपनिषद में कह दिया है, आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। यही मैं हूं, मेरा यही स्वरूप है। जब जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव वो कर लेता है तब फिर वह किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। उसके अलावा संसार में और काम में क्या रहा, उसके लिए प्राप्य क्या रहा, काम में क्या रहा, तो क्यों शरीरम अनुसंजरित, क्यों शरीर का संताप करेगा वो, आदि फलश्रुति उसी की बात यहां कह रहे हैं। परस्मिन ब्रह्मणि ज्ञाते अलम याग ही अलम योग ही, सारी योग साधना तो उस सप्तम भूमि का छठी भूमि का में जब तक नहीं पहुंचते तब तक के लिए है, और उस छठम भूमिका में जब पहुंच गया तो उसके लिए योग की फिर क्या जरूरत है? अब ये सिद्ध है कि यदि अब निरंतर अभ्यास नहीं करेगा तो वो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। अरे भाई, भ्रष्ट होने के लिए कोई कारण बचे तब ना भ्रष्ट होगा। वो अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वो तो अभ्यस्त होकर उस भूमिका में पहुंच गया है। अब तो उसका आगे के जो है वो तो केवल प्रारब्धाधीन है। पुराणों में तुम लोगों ने सुना है बहुत बार, एक ऋषि कहीं जा रहे थे भूख से तड़पते हुए, अब मरे कि तब मरे, छटपटा रहे थे और प्रारब्ध भी सोच रहा था कि कुछ न कुछ इसके शरीर में डालें तो कुछ दिन ये शरीर और चले, क्योंकि मुझे ये शरीर और टिकाना है, प्रारब्ध चाह रहा था। तो संयोग से एक चांडाल कुत्ते के मांस खा रहे थे। कहानी सुनिए, चांडाल कुत्ते का मांस खा रहा था, पड़ से उन्होंने मांग लिया कि अरे मुझे भूख लग रही है, दे दे मुझे भी। वो चांडाल ने कहा कि अरे महाराज, तुम कहां साधु, कहां ऋषि, कहां मुनि और कहां मैं चांडाल, और उसमें भी ये कुत्ते का मांस। बोले मुझे और कुछ नहीं, तो क्या है वो हम नहीं जानते, किसका मांस है हम नहीं जानते, इस समय सिर्फ हमें भोजन की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है। उसने दे दिया, ले खाओ। तो उन्होंने खा लिया, महात्मा ने, ऋषि ने खा लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि एक चमड़े में पानी भर के रखा था वो चांडाल ने, तो चमड़े की थैली से पानी निकाला और खाया, पी लिया, और उस महात्मा को कहा कि तुम मांस तो खा ही लिए हो, ये पानी भी पी लो। बोले धट, हम द्विज हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ऋषि हैं, ये चमड़े के थैली में डाला हुआ पानी हम खाएंगे पिएंगे? धट, वो भी तेरा जूठा किया हुआ हम खाएंगे, चांडाल का जूठा हम खाएंगे? क्या करंट आ गया है? अब तो क्या करंट आ गया, क्या जवाब आ गया? चल पड़े महात्मा, नहीं खाए। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि जूठा कुत्ते का मांस खाते समय उनका धर्म कहां गया, वर्ण आश्रम जाति गोत्र कहां गया? अब खा लेने के बाद फिर ये अकड़, देख लो। कहा देखो, ये सब प्रारब्ध प्रेरित है, इस शरीर टिकाने के लिए तत्काल अन्न की जरूरत थी, वो प्राप्त हो गया, अब एक दो दिन के लिए पेट्रोल मिल गया शरीर, अब दो चार दिन के लिए अन्न न भी मिले पानी न भी मिले नष्ट होगा नहीं, तब तक तो दो चार दिन में तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, जैसे पानी तो हम खोज ही लेंगे। तो उस भूमिका में पहुंचने वाला व्यक्ति उस परिभाषा को नहीं जानता, जो परिभाषा शास्त्रीय परिभाषा, योगिक परिभाषा, सामाजिक परिभाषा हम लागू करते हैं, वो परिभाषा वो नहीं जानता। अलम याग ही अलम योग ही अलम भुक्ति ही अलम धन ही। भोग भी अब उसके लिए पर्याप्त हो गया, पूर्ण हो गया। अब भोग भोग्य वस्तु जगत में नहीं है। अलम धन ही, क्या करेगा अब धन से? बोलो, उस भूमिका में पहुंचा हुआ ज्ञानी ही ब्रह्म को आत्मा के रूप में, आत्मा को ब्रह्म के रूप में, दोनों को एक रूप में निश्चय करके अपरोक्ष किया हुआ ज्ञानी को अब धन की क्या आवश्यकता है? बोलो, जरूरत है धन की? धन तो तुम्हारे हमारे लिए जरूरत है, हमें अन्न छत्र चलाना है, तुम्हें अपने बहु बेटों के लिए घर बनाना है, हमको गुरुकुल चलाना है, तुम्हें भी धन की जरूरत है, हमको भी धन की जरूरत है, उसको क्या है? उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। अलम वेद ही अलम शास्त्र ही अलम स्मृति पुराणक ही परमात्मनि विज्ञाते इति वेदांत डिंडिमः। आत्मा परमात्मा की एकता को जिसने जान लिया उसके लिए अलम वेद ही, वो वेद पढ़ने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि उसको वेदानुशासन लागू नहीं होगा। अलम शास्त्र ही, उसको व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको न्याय मीमांसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलम स्मृति, मनुस्मृति आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सब का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मात्मिक की एकता, और वो उसको प्राप्त हो गया तो फिर अब क्या प्रयोजन? शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखी है, नारियल के पानी पीने के बाद जिस तरह उस नारियल के को फेंक दिया जाता है, इसी तरह वेद को फेंक दिया जाता है। वेद की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए वेद की आवश्यकता है? बोले उसके लिए नहीं, उसके बेटे के लिए आवश्यकता है कि नहीं? बोलो, ज्ञानी को वेद की आवश्यकता नहीं है तो ज्ञानी के बेटे के लिए वेद की आवश्यकता है कि नहीं है? तो वो ज्ञानी मेरे बेटे के लिए वेद की आवश्यकता है करेगा? ज्ञानी की दृष्टि रहेगी, ये मेरा बेटा है, उसके लिए जरूरत है? बेटा क्या होता है भाई है? वो उसको पुत्र की परिभाषा लागू ही नहीं होगी, परिभाषा ही नहीं जानेगा वो। और पुत्र तो तुम और हम जानेंगे ना, पुत्र की परिभाषा तो तुम और हम जानते हैं ना, पुम नामक नरकात्रायति इति पुत्र है, पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में पुम नामक नरक का स्वरूप वर्णन किया है गरुड़ पुराण। पुम नामक नरक क्या है? तो बोले नरक के जो समूह है उसका नाम पुम नाम नरक। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, कुंभिपाक, ऐसे नरकों का नाम अलग अलग बताया है और स्वरूप भी बताया है, कहां है, कैसा है। फिर उन सभी नरकों के समूहों को पुम करके नाम दिया, उन सभी नरक समूह से बचावे तो उसका नाम पुत्र, त्राण करे, रक्षा करे, उसका नाम पुत्र। लो जी, इसीलिए बेटा तो चाहिए भाई, नहीं तो फिर नरक से कौन बचाएगा, बोलो। अब ये भूमिका में पहुंचा हुआ व्यक्ति पुत्र की ये परिभाषा करने लगेगा, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। नरक स्वर्ग की परिभाषा ही जिसके सामने नहीं है तो पुत्र की परिभाषा क्या होगी, वो तो तुम हम अज्ञानी हैं, हम स्वर्ग और नरक की परिभाषा करते हैं इसीलिए हमें पुत्र की आवश्यकता है और पुत्र की परिभाषा ये कर रखी है। और सच बताऊं, जिस धातु से जिस अर्थ में पुत्र शब्द प्रयोग हुआ है उसी धातु उसी अर्थ में पुत्री शब्द प्रयोग हुआ है। व्याकरण के हिसाब में पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पुलिंग में पुत्र है तो स्त्रीलिंग में पुत्री है, बस इतना ही है। इसका अर्थ बदलता नहीं है, वही है स्वयं। तो पुत्री भी अपने मां बाप को पुम नामक नरक से बचाती है। तो ये सब होते हुए फिर बेटियों को क्यों मारा जा रहा है, नरेंद्र मोदी का अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि काम तो उसने भी वही करना है भाई। हाँ, पुत्री है। तो ये पुराण स्मृति तो अज्ञान की भूमिका में है। परात्मनि विज्ञाते इति वेदांत डिंडिमः, ये लगभग इस श्लोक पुनरावृत्ति जैसा भी लगता है। नर्चा न यजुसार्थो अस्ति न साम्नार्थो अस्ति कच्चन, जाते ब्रह्मात्म विज्ञाते इति वेदांत डिंडिम। वेदांत का ही घोष है, डिंडिम घोष है, नगाड़ा पीट पीट कर सुनाया जा रहा है। नरचा न ऋचा, ऋग्वेद, उस ज्ञानी को ऋग्वेद की आवश्यकता नहीं है, ऋचा का अनुशासन लागू नहीं होगा। न यजुसाम अर्थो प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद का महावाक्य, यजुर्वेद का महावाक्य, सामवेद का महावाक्य, अथर्व वेद का महावाक्य, चार महावाक्य, अब क्या काम है उस महावाक्यों का, अब क्या जरूरत है, ने? आम खाने के बाद गुठली फेंकना है कि जेब में रखना है, बोलो। तुम लोगों ने तो परिभाषा फिर भी बना दी है, आम के आम गुठली के दाम, तुम तो बनिया हो ना, गुठली के भी दाम निकालने के लिए आम खाने के बाद गुठली भी झोले में रख लेते हो। लेकिन वो बनिया नहीं है, कौन ज्ञानी। ये ठीक कह रहे हो तुम, जाते ब्रह्मात्म विज्ञाने, ब्रह्मात्म की एकता का विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर उसको ऋग्वेद की आवश्यकता नहीं, यजुर्वेद की आवश्यकता नहीं, सामवेद की आवश्यकता नहीं। नर्चा न यजुर्सार्थोस्ति न साम्नार्थोस्ति कश्चन, जाते ब्रह्मात्म विज्ञाने इति वेदांत डिंडिमः। और आगे कहते हैं शंकराचार्य, कर्माणि चित्तशुद्ध्यर्थम् एकाग्र्यार्थम् उपासना, मोक्षार्थम् ब्रह्म विज्ञानम् इति वेदांत डिंडिम। जब तक चित्त शुद्धि न हो तब तक कर्म, शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक कर्म कर्तव्य है। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, विवेक चूड़ामणि में भी कहा है, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धवे, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। अब वही शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि लिखी है, वही है वेदांत डिंडिम लिख रहे हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं ये बात। कर्माणि चित्त शुद्धि अर्थम, एकाग्र्यार्थम उपासना, अंग उपासना, संविद उपासना, प्रतीकोपासना, दहरो उपासना, अनेक उपासना के भेद हैं, आलंबनोपासना, सभी उपासना सिर्फ चित्त की स्थिरता के लिए है। शुद्धि की अलग प्रक्रिया है, स्थिरता की अलग प्रक्रिया है, इसको थोड़ा कल संकेत करेंगे, आज समय ज्यादा हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।